एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो दिखती तो रोज है, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, कभी तस्वीरों में, लेकिन शायद हम सोचते नहीं कि ये कितनी अहम है।
हाँ, वो बड़ा सा मेटल का डब्बा है ना, शिपिंग कंटेनर।
बिल्कुल।
और इसी सादे से दिखने वाले डिब्बे के पीछे जो पूरी दुनिया बदलने वाली कहानी है, वो बताई है मार्क लेविंसन ने अपनी किताब द बॉक्स में।
द बॉक्स, हाउ द शिपिंग कंटेनर मेड द वर्ल्ड स्मॉलर एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी बिगर। कमाल की किताब है।
और आज हम इसी पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक मतलब डिब्बे की कहानी नहीं है।
हाँ, ये कहानी है कि कैसे इसने दुनिया को छोटा कर दिया और इकोनॉमी को बड़ा।
सही कहा।
और आज के जमाने में ये समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो दुनिया भर का व्यापार है, ये असल में चलता कैसे है? हाँ, और जो सामान हम खरीदते हैं, वो हम तक पहुंचता कैसे है? यहाँ तक कि हमारे शहर, उनका रूप कैसे बदला है, सब इससे जुड़ा है।
ये वैश्वीकरण के पीछे की वो ताकत है जिसे हम देखते नहीं। तो चलिए आज इस बॉक्स को खोलकर देखते हैं जरा।
जरूर। अच्छा, तो पहले लेखक की बात कर लें, मार्क लेविंसन।
हाँ, बताइए।
मजे की बात यह कि वो कोई शिपिंग इंडस्ट्री के मतलब अंदर के आदमी नहीं है। वो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं और पत्रकार भी रहे हैं।
अच्छा।
हाँ, द इकोनॉमिस्ट, न्यूज वीक जैसी बड़ी जगहों पर काम किया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में सीनियर फेलो भी रहे हैं, तो उनका बैकग्राउंड काफी सॉलिड है।
तो फिर उनका नजरिया अलग होगा, मतलब वो इसे सिर्फ एक इंजीनियरिंग की चीज की तरह नहीं देख रहे होंगे।
बिल्कुल नहीं, वो एक इकोनॉमिस्ट की नजर से देखते हैं कि भाई इस डिब्बे ने व्यापार पर, नौकरियों पर, शहरों पर, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर डाला, कैसे डाला।
वो ये नहीं पूछ रहे कि ये कैसे काम करता है।
हाँ, बल्कि ये क्यों इतना बड़ा चेंज ले आया है।
दिलचस्प है।
और यही उनकी खूबी है। एक इकोनॉमिस्ट की तरह वो नंबर देखते हैं कि भाई महंगाई कैसे कम हुई, उत्पादकता कैसे बढ़ी, और एक इतिहासकार की तरह वो इसकी कहानी ही सुनाते हैं, वो लोग, उनके झगड़े, वो मुश्किलें।
मतलब कहानी भी है और एनालिसिस भी।
एग्जैक्टली। उन्होंने एक मामूली सी चीज को ग्लोबलाइजेशन जैसी बड़ी कहानी का हीरो बना दिया।
तो किताब का मेन आइडिया क्या है, सार क्या है इसका?
सार यह है कि ये सिर्फ एक स्टील के डिब्बे की कहानी नहीं, ये आधुनिक दुनिया के बनने की कहानी है। लेविंसन कहते हैं कि ये जो बोरिंग सा दिखने वाला कंटेनर है ना,
हाँ,
ये असल में आज के कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक छुपा हुआ हीरो है।
छुपा हुआ हीरो? अच्छा।
किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि भाई 1950s-60s से पहले सामान भेजना, खासकर समुंदर के रास्ते, बहुत ही क्या कहते हैं, झंझट का काम था।
हाँ, मुश्किल तो रहा होगा।
बहुत मुश्किल, महंगा, धीमा। उस तरीके को कहते थे ब्रेक बल्क, मतलब सारा सामान अलग अलग, कॉफी की बोरी अलग, मशीन का पुर्जा अलग, कपड़े की गांठ अलग, सब खुला हुआ।
अच्छा, सब टुकड़ों में।
हाँ, फिर पोर्ट पर आओ तो मजदूरों की पूरी फौज उसे एक एक करके जहाज पर चढ़ाएगी, जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हो कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सामान कैसे फिट करें।
और फिर उतारने में वही मेहनत।
बिल्कुल, वही पूरी प्रक्रिया उल्टी।
अरे बाप रे, इसमें तो कितना वक्त और पैसा लगता होगा।
हाँ, किताब बताती है कि कई बार जहाज बंदरगाह पे खड़े खड़े लोडिंग अनलोडिंग में ही उतना टाइम बिता देते थे जितना उन्हें समंदर में चलने में लगता था।
सच में?
हाँ, और शिपिंग की लागत कभी कभी चीज की कीमत का 25% या उससे भी ज्यादा। सोचिए,
बाप रे।
ऊपर से चोरी का डर, सामान टूटने फूटने का डर अलग। लेविंसन इसे कहते हैं लॉजिस्टिक फ्रिक्शन, मतलब वो रगड़, वो रुकावट जो सामान को हिलाने डुलाने में होती है।
और इसी ने व्यापार को धीमा कर रखा था।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बाधा थी। और कंटेनर ने आकर क्या किया, इसी फ्रिक्शन को, इसी रगड़ को लगभग खत्म कर दिया।
कैसे?
बस डिब्बे में बंद करके।
हाँ,
मतलब सामान को एक स्टैंडर्ड साइज के डिब्बे में बंद कर दिया, जिसे मशीनें, क्रेन वगैरह आसानी से उठा सकें, रख सकें। नतीजा, शिपिंग कॉस्ट और टाइम दोनों मतलब ड्रामेटिकली कम हो गए।
एकदम से।
एकदम से। लेकिन असर सिर्फ सस्ता होने तक नहीं रुका, इसने तो पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां कहां लगेंगी, व्यापार कैसे होगा, शहर कैसे बसेंगे, सब बदल डाला।
अच्छा, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। वो दुनिया कैसी थी जब ये कंटेनर नहीं थे?
ब्रेक बल्क वाली दुनिया।
हाँ।
किताब उस दौर के पोर्ट्स की बड़ी अच्छी तस्वीर खींचती है। सोचिए, हर चीज अलग अलग पैक होकर आ रही है। ट्रक या ट्रेन से सामान आया, मजदूरों ने उसे उतारा, गोदाम में रखा, फिर जब जहाज आया तो गोदाम से निकालकर जहाज में एक एक चीज को करीने से जमाया। इसमें सिर्फ मेहनत नहीं, हुनर भी चाहिए था।
हाँ, जगह का सही इस्तेमाल करना, सामान टूटे ना।
बिल्कुल।
और फिर मंजिल पर पहुंचकर सारी कहानी फिर से उल्टी।
और वो जो अक्षमता की बात आप कर रहे थे कि जहाज आधे से ज्यादा वक्त पोर्ट पर ही खड़े रहते थे।
हाँ, लिविंसन यही बताते हैं। सोचिए कितना वेस्टेज, मजदूरी का खर्चा अलग, चोरी तो इतनी आम थी कि लोग उसे बिजनेस कॉस्ट मानकर चलते थे।
अच्छा, उसे लागत का हिस्सा ही मान लिया।
हाँ, और सामान का खराब होना, टूटना फूटना, वो तो था ही। इन सब वजह से दूर देशों से सामान मंगाना बहुत महंगा पड़ता था। कई तरह के व्यापार तो होते ही नहीं थे।
समझ में आता है। तो यहीं पर एंट्री होती है मैल्कम मैकलेन की।
बिल्कुल, कहानी के हीरो की एंट्री। और सबसे मजेदार बात क्या है?
क्या?
वो शिपिंग इंडस्ट्री से थे ही नहीं।
नहीं तो फिर?
वो नॉर्थ कैरोलिना के एक ट्रक कंपनी के मालिक थे। एक सफल ट्रक कंपनी चलाते थे।
अच्छा, एक ट्रकर।
हाँ, और वो परेशान थे इस बात से कि उनके ट्रक बंदरगाहों पर घंटों बल्कि दिनों बेकार खड़े रहते हैं, सामान चढ़ने उतरने के इंतजार में। टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद।
समझ सकती हूँ उनकी फ्रस्ट्रेशन।
और इसी फ्रस्ट्रेशन से निकला वो आइडिया जिसने दुनिया बदल दी। मैकलेन ने सोचा, यार ये सामान को बार बार उठाने रखने का क्या मतलब है, क्यों ना पूरा का पूरा ट्रक का ट्रेलर ही उठाकर जहाज पर रख दें।
पूरा ट्रेलर?
हाँ, शुरू में यही आइडिया था। बाद में ये ट्रेलर से हटकर एक स्टैंडर्ड साइज के डिब्बे यानी कंटेनर पर आया। पर सोच सिर्फ डिब्बे की नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम की सोच थी जिसे कहते हैं इंटर मॉडल सिस्टम।
इंटर मॉडल मतलब?
मतलब सामान एक बार फैक्ट्री में कंटेनर में भरा जाए, फिर वही कंटेनर ट्रक पर चढ़े, ट्रक से जहाज पर, जहाज से उतरे तो ट्रेन पर, और फिर ट्रक से सीधा ग्राहक तक पहुंचे, बिना खुले, बिना सामान को हाथ लगाए।
वाह, ये तो कमाल का आइडिया था। सुनने में कितना सिंपल लगता है आज।
लगता है ना, लेकिन इसे करने के लिए मैकलेन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अपनी चलती हुई ट्रक कंपनी बेच दी उन्होंने।
बेच दी? क्यों?
पैसा जुटाने के लिए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पुराने तेल वाले टैंकर खरीदे, सस्ते मिल गए होंगे।
अच्छा।
और उन्हें मॉडिफाई करवाया ताकि उनपे कंटेनर रखे जा सके, डेक बनवाए। और फिर आया वो दिन, 26 अप्रैल 1956,
आइडियल एक्स।
हाँ, उनका पहला कंटेनर जहाज आइडियल एक्स 58 कंटेनर लेकर निकला नेवाक न्यू जर्सी से ह्यूस्टन प्लेक्सस के लिए।
उस दिन माहौल कैसा था? किताब में कुछ है इसके बारे में?
हाँ, लेविंसन लिखते हैं कि पोर्ट पर जो पुराने शिपिंग वाले थे वो मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे ये क्या पागलपन है, और मैकलेन की टीम की सांसें अटकी हुई थी कि सब ठीक से हो जाए।
और हो गया।
हाँ, सफर कामयाब रहा, लेकिन असली कामयाबी सिर्फ पहुंचना नहीं थी, असली बात थी लागत। अंदाजा लगाया गया कि कंटेनर से माल ढुलाई का खर्चा ब्रेक बल्क के मुकाबले लगभग 97% कम था।
97%? ये तो अविश्वसनीय है।
हाँ, जहां पहले करीब $6 प्रति टन लगता था, वहां अब सिर्फ 16 सेंट। ये वाकई एक नए युग की शुरुआत थी, भले ही उस वक्त बहुत कम लोगों ने इसे पहचाना।
लेकिन जैसा होता है, हर नई चीज का विरोध भी होता है, इसका रास्ता आसान नहीं रहा होगा।
अरे बिल्कुल नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था। इसे दशकों तक, मतलब कई सालों तक, जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा।
किसका विरोध?
सबसे बड़े विरोधी थे पोर्ट पर काम करने वाले मजदूरों के यूनियन, जैसे अमेरिका का ILA, इंटरनेशनल लॉन्गशोरमैन एसोसिएशन।
क्यों?
नौकरियों का डर।
जाहिर है,
उनके लिए तो ये कंटेनर दुश्मन था। सोचिए, एक क्रेन कुछ ही मिनटों में उतना माल उठा लेती थी जितना दर्जनों मजदूर घंटों में करते थे। हजारों नौकरियां खतरे में थी।
दोनों ने हड़तालें वगैरह की होंगी।
हाँ हाँ, 60 और 70 के दशक में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के बंदरगाहों पर लंबी लंबी हड़तालें हुई, काम ठप कर दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था।
और सिर्फ मजदूरों का ही विरोध था या और भी लोग थे?
नहीं, और भी थे। जो पुरानी शिपिंग कंपनियां थीं वो हिचक रही थीं। उन्हें इस नए सिस्टम में भारी पैसा लगाना पड़ता, नए जहाज, नई क्रेनें, पोर्ट पर बदलाव।
हाँ, वो क्यों रिस्क लेती?
सही बात। फिर पोर्ट अथॉरिटी वाले परेशान थे, उनके पुराने घाट, वो जो उंगली जैसे लंबे लंबे बने होते थे पानी में।
हाँ, फिंगर पेयर जिन्हें कहते हैं।
हाँ, वो इन बड़े कंटेनर जहाजों के लिए बेकार थे। कंटेनर रखने और उठाने चढ़ाने के लिए तो बड़ी खुली जगह चाहिए, तो पोर्ट्स को पूरा बदलना पड़ता।
और नियम कानून, रेगुलेटर्स,
उनका भी पंगा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके लिए कायदे कानून कैसे बनाएं। तो हाँ, कंटेनर की जीत कोई एक दिन में नहीं हुई, ये एक लंबी मुश्किल लड़ाई थी।
इस लड़ाई में कोई टर्निंग पॉइंट आया? कोई ऐसी चीज जिसने माहौल बदला?
हाँ, एक बड़ा अनपेक्षित मोड़ आया वियतनाम युद्ध के टाइम पर।
वियतनाम युद्ध, उससे क्या लेना देना?
लेना देना ये था कि अमेरिकी सेना को वियतनाम में बहुत सारा सामान, रसद वगैरह भेजनी पड़ती थी, और उन्हें भारी दिक्कतें आ रही थी।
कैसी दिक्कतें?
पोर्ट्स पर भीड़ बहुत थी, सामान चोरी हो जाता था या पहुंचने में ही महीनों लग जाते थे, मतलब लॉजिस्टिक्स का बुरा हाल था।
अच्छा।
रब अमेरिकी सरकार ने मैकलीन की कंपनी सी लैंड सर्विस की तरफ देखा। उन्होंने सेना के लिए कंटेनरों में सामान भेजना शुरू किया।
तो इससे क्या हुआ?
दो बड़े असर हुए। पहला, इसने बड़े स्केल पे साबित कर दिया कि एक कंटेनर सिस्टम कितना भरोसेमंद और कितना तेज है। मिलिट्री के लिए तो ये बहुत जरूरी था।
हाँ, बिल्कुल।
और दूसरा, सरकार ने इस काम के लिए कंटेनर जहाज खरीदने, क्रेने लगवाने और पोर्ट्स को सुधारने में मतलब खूब पैसा लगाया।
तो एक तरह से युद्ध ने कंटेनर सिस्टम के विकास को सब्सिडी दे दी,
कह सकते हैं। अनजाने में ही सही, वियतनाम युद्ध ने कंटेनर सिस्टम को दुनिया भर में फैलाने में, खासकर पैसिफिक रूट पर, बड़ी मदद की।
लेकिन दुनिया भर में फैलाने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी थी, है ना, कि सब जगह एक ही तरह के कंटेनर चले।
एग्जैक्टली। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, ये सबसे जरूरी चीजों में से एक थी। सोचिए अगर अमेरिका का कंटेनर यूरोप की क्रेन पर फिट न हो
या एशिया के ट्रक पर न चढ़े
तो पूरा सिस्टम ही बेकार हो जाता। इसलिए यह तय करना बहुत जरूरी था कि दुनिया में कहीं भी कंटेनर बने उसका साइज एक हो।
साइज के अलावा और क्या?
उसके कोनों पर लगने वाली फिटिंग्स, जिन्हें कॉर्नर कास्टिंग कहते हैं, जिनमें क्रेन के हुक फंसते हैं, वो एक जैसी हों, और उन्हें एक दूसरे पर रखकर लॉक करने का तरीका, वो ट्विस्ट लॉक मैकेनिज्म, वो भी स्टैंडर्ड हो।
ये सब तय करना आसान रहा होगा।
अरे नहीं, इसमें भी सालों लगे हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान, सब देशों की कंपनियां, इंजीनियर, सरकारें, सबके बीच लंबी बहसें चली, मीटिंगें हुई।
अच्छा।
हाँ, तब जाकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO के जरिए इन मानकों पे सहमति बनी। इसमें कीथ टैंटलिंगर जैसे इंजीनियरों का बड़ा रोल था। उन्होंने ही वो ट्विस्ट लॉक डिजाइन किया था।
ट्विस्ट लॉक, वो जो कोने में घुमाकर लॉक करते हैं?
हाँ, वही। दिखने में सिंपल है पर कमाल की चीज है। इसी से कंटेनरों को उठाना, जमाना, सुरक्षित करना आसान हुआ। ये दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बड़ी बातों से नहीं, ऐसी छोटी छोटी तकनीकी सहमतियों से भी चलता है।
तो जब स्टैंडर्ड बन गए, विरोध थोड़ा कम हुआ और वियतनाम ने इसकी ताकत दिखा दी, तब क्या हुआ?
तब हुआ धमाका। 1970 और 80 के दशक में कंटेनर सिस्टम पूरी दुनिया में बिजली की तेजी से फैल गया और इसके जो नतीजे हुए वो वाकई किसी आर्थिक भूकंप जैसे थे।
क्या क्या हुआ?
सबसे पहली बात, जैसा हमने कहा, शिपिंग की लागत 90% से भी ज्यादा गिर गई।
90%?
हाँ। नतीजा, दूरी का महत्व मानो खत्म सा हो गया। अब कोरिया में बना टीवी यूरोप भेजना उतना ही सस्ता हो गया जितना शायद देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर ट्रक से भेजना।
इससे तो व्यापार करने का पूरा तरीका ही बदल गया होगा।
बिल्कुल। यहीं से शुरू हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन का दौर। अब कंपनियां आजाद थीं, वो दुनिया के उस कोने में फैक्ट्री लगा सकती थीं जहां मजदूरी सबसे कम हो,
क्योंकि माल वापस लाना सस्ता हो गया था।
एग्जैक्टली।
तैयार माल को अमेरिका या यूरोप के बाजारों तक पहुंचाना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। इसी वजह से हमने देखा कि कैसे अमेरिका और यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग पहले शायद मेक्सिको गई, फिर चीन चली गई।
तो मेड इन चाइना के पीछे कंटेनर का बहुत बड़ा हाथ है।
बहुत बड़ा। सिर्फ सस्ती लेबर नहीं, सस्ते ट्रांसपोर्टेशन ने इसे मुमकिन बनाया।
और शहरों पर क्या असर हुआ?
शहरों का तो नक्शा ही बदल गया। न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, इन जैसे पुराने शहर जिनके बीचों बीच कभी व्यस्त बंदरगाह होते थे,
हाँ, जहां से सारी रौनक होती थी,
वो बंदरगाह धीरे धीरे खत्म हो गए। कंटेनर जहाज इतने बड़े होते थे और उन्हें इतनी जगह चाहिए होती थी कि पुराने घाट बेकार हो गए।
तो फिर नए बंदरगाह कहाँ बने?
वो बने शहरों से बहुत दूर, विशाल फैले हुए ऑटोमेटेड टर्मिनल जहाँ इंसानों से ज्यादा मशीनें और कंप्यूटर काम करते हैं, जैसे न्यूयॉर्क या फेलिक्सटो।
और पुरानी बंदरगाह वाली जमीन का क्या हुआ? वो बन गई प्राइम रियल एस्टेट। वहाँ आज बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस हैं, रेस्टोरेंट हैं, पार्क हैं। शहरों का चेहरा ही बदल गया।
और हम जैसे आम लोगों पर, कंज्यूमर पे क्या असर पड़ा?
फायदा ही फायदा। कंटेनरीकरण ने दुनिया भर से सस्ते सामान का दरवाजा खोल दिया। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, सबको सस्ता और आसानी से मिलने लगा।
तो महंगाई कम करने में भी इसका रोल रहा?
बहुत बड़ा। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने वाली एक बड़ी ताकत बना। और आज भी सोचिए, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से हम जो फटाफट और सस्ता सामान मंगा लेते हैं,
हाँ,
उसके पीछे भी यही कंटेनर क्रांति है। ये पूरी लॉजिस्टिक्स चेन उसी पर टिकी है।
तो इस पूरी कहानी से अगर कुछ बड़े सबक निकालने हो तो क्या होंगे?
कई सबक हैं। पहला तो यही कि इनोवेशन, मतलब कोई नई खोज, सिर्फ एक चीज बनाने से नहीं होती। ये एक पूरा सिस्टम बनाने के बारे में है।
जैसे कंटेनर सिर्फ डिब्बा नहीं था।
हाँ, असली चीज थी उसके चारों ओर बना वो पूरा जाल, वो क्रेने, जहाज, ट्रक, ट्रेन, उन्हें ट्रैक करने का सिस्टम।
मैल्कम मैकलीन की कामयाबी उनकी सिस्टम थिंकिंग में थी।
दूसरा सबक।
दूसरा है हमारी आज की दुनिया की छिपी हुई बनावट। हम सब ग्लोबल चीजों से घिरे हैं, पर हम कभी सोचते नहीं कि ये हमारे पास आई कैसे।
सही बात है।
ये किताब उस अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने लाती है। हमारी मॉडर्न कंज्यूमर सोसाइटी इन्हीं स्टैंडर्ड डिब्बों और उन्हें घुमाने वाले विशाल नेटवर्क पर टिकी है।
और तीसरा, आपने रचनात्मक विनाश का जिक्र किया था।
हाँ, शुम्पीटर का आइडिया कि जब कोई नई बेहतर चीज आती है तो वो तरक्की लाती है, इकोनॉमी को बढ़ाती है, चीजें सस्ती करती हैं।
लेकिन
वो पुरानी चीजों को, पुराने तरीकों को, पुरानी नौकरियों को खत्म भी कर देती है। कंटेनर ने लाखों लॉन्गशोरमैन की नौकरियां खत्म की, पुराने बंदरगाहों को बेकार कर दिया।
भारत में भी जब ऑटोमेशन की बात होती है, नौकरियों पर असर की, तो ये बड़ा उदाहरण है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि तरक्की की एक कीमत भी होती है।
चौथा सबक क्या होगा?
मानकीकरण की ताकत, स्टैंडर्डाइजेशन। सुनने में कितना बोरिंग लगता है ना, साइज तय करना, फिटिंग तय करना।
हाँ, टेक्निकल लगता है,
पर सोचिए इसके बिना ग्लोबलाइजेशन मुमकिन ही नहीं था। सबने मिलकर सामान ढोने के लिए एक कॉमन भाषा बनाई। जैसे यूएसबी पोर्ट ने हमारे सारे डिवाइस जोड़ दिए, वैसे ही कंटेनर ने दुनिया के पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जोड़ दिया।
पांचवा सबक
कि बड़े बदलाव जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर से ही आए। देखिए, शिपिंग में क्रांति कोई पुरानी शिपिंग कंपनी नहीं लाई,
वो तो एक ट्रकर लाया।
हाँ, एक बाहरी आदमी जिसने इंडस्ट्री की दिक्कतों को एक नई नजर से देखा और बिल्कुल हटकर सोचा।
और छठा सबक, अनअपेक्षित परिणाम वाला।
हाँ, वो भी बहुत अहम है। मैकलीन का मकसद तो सीधा था, शिपिंग को एफिशिएंट बनाना, सस्ता करना। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि उनके इस डिब्बे से अमेरिका और यूरोप में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा,
चीन दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा,
या दुनिया भर के समुद्र तटों का नक्शा ही बदल जाएगा।
बड़े आइडियाज के असर अक्सर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरे और दूर तक जाते हैं। जैसे इंटरनेट का असर हुआ।
किताब में कुछ कोट्स या ऐसी बातें भी हैं जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे एक ये कि 1960 के दशक से पहले चीज बनाने की लागत नहीं बल्कि उसे ग्राहक तक पहुँचाने की लागत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ी बाधा थी।
ये बिल्कुल साफ कर देता है कि असली रुकावट क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
बिल्कुल, या फिर ये कि मैकलीन की महान अंतर्दृष्टि कंटेनर स्वयं नहीं थी बल्कि यह विचार था कि पूरी शिपिंग प्रक्रिया को कारखाने से लेकर खुदरा स्टोर तक एक एकीकृत प्रणाली माना जा सकता है।
फिर वही बात, सिस्टम की सोच, सिर्फ डिब्बा नहीं पूरी चेन।
हाँ, और एक ये भी है जो थोड़ा चौंकाता है, कंटेनर ने पिछले 50 वर्षों के सभी व्यापार समझौतों की तुलना में वैश्वीकरण को अधिक बढ़ावा दिया। मतलब टेक्नोलॉजी और अर्थशास्त्र का असर पॉलिटिक्स और समझौतों से भी ज्यादा हो सकता है।
हाँ, जब चीजें भेजना इतना सस्ता और आसान हो गया तो व्यापार तो अपने आप बढ़ना ही था। लागत कम होने का तर्क ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ।
और शहरों पर जो असर हुआ उसके बारे में भी कोई लाइन?
हाँ, ये वाली, जीवंत काम करने वाले बंदरगाहों वाले शहरों की दुनिया गायब हो गई। बंदरगाह का असली काम मीलों दूर अनदेखा और अनसुना होता है।
ये तो बिल्कुल सच है, आज पोर्ट्स पर आम लोगों का जाना भी नहीं होता।
सही कहा, और आज के जमाने के लिए शायद ये सबसे मौजू है। कंटेनर के बिना कोई वॉलमार्ट, कोई आईकिया, कोई अमेज़न नहीं होता।
सोचिए जरा, हमारा पूरा रिटेल, खासकर ये जो बड़ी चेन है और जो ऑनलाइन शॉपिंग है,
वो सब इसी सस्ती और तेज लॉजिस्टिक्स के दम पर ही चल रहा है। ये उसका आधार है।
तो इन सब बातों को अगर हम आज की जिंदगी से जोड़ें तो क्या मायने निकलते हैं?
देखिए, जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए सबक है कि सिर्फ अपना प्रोडक्ट मत देखो, पूरी सप्लाई चेन देखो। रुकावटें कहाँ हैं, बॉटलनेक कहाँ है,
हाँ, कहाँ चीजें अटक रही हैं।
और कभी कभी पूरी प्रक्रिया को ही नए सिरे से सोचना पड़ता है। जैसे मैकलीन ने सोचा, सिस्टम थिंकिंग जरूरी है।
और इकोनॉमिक्स को समझने में कैसे मदद मिलती है?
ये ग्लोबलाइजेशन, सप्लाई चेन, तुलनात्मक लाभ, ये सब जो भारी भरकम कॉन्सेप्ट लगते हैं ना,
हाँ,
कंटेनर की कहानी उन्हें एकदम जमीनी हकीकत से जोड़ देती है। कोई चीज मेड इन चाइना क्यों है? इसका जवाब सिर्फ सस्ती लेबर नहीं है, इसका जवाब ये भी है कि उसे यहां तक लाना अब सस्ता और आसान है। ये भौतिक संभावना कंटेनर ने बनाई।
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिहाज से क्या सीख मिलती है?
एक तो ये कि सबसे असरदार इनोवेशन हमेशा सबसे चमकीले या हाईटेक नहीं होते। कंटेनर तो लोहे का डिब्बा ही है।
सही बात है।
असली ताकत थी उसके पीछे के आइडिया में, स्टैंडर्डाइजेशन में और नेटवर्क बनाने में। और दूसरी बात ये कि नए आइडिया का विरोध तो होगा ही, आपको टिके रहना पड़ता है।
और हम सबके लिए, आम नागरिक के तौर पर,
हम सबके लिए ये दुनिया को देखने का एक नया लेंस देता है। अगली बार जब कोई इम्पोर्टेड चीज खरीदें या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें तो एक पल को सोचें उस डिब्बे के बारे में?
हाँ, जिसने शायद हजारों मील का सफर किया है।
बिल्कुल, ये हमें उस छुपे हुए लेकिन बेहद जरूरी सिस्टम की सराहना करना सिखाता है जिस पर हमारी आज की जिंदगी कितनी ज्यादा निर्भर है।
खासकर जब कोरोना आया या स्वेज नहर में जहाज फंसा।
हाँ, तब हमें पता चला कि ये सप्लाई चेन कितनी नाजुक भी हो सकती है और कितनी जरूरी भी। ये किताब एक तरह की, क्या कहें, लॉजिस्टिक चेतना जगाती है। आपको चीजों के सफर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया बदलने वाले बदलाव कई बार कितनी साधारण सी दिखने वाली जगहों से आ सकते हैं, और ये कि हमें उन बुनियादी ढांचों पर ध्यान देना चाहिए जो शायद बोरिंग लगे पर जिनके बिना काम नहीं चल सकता।
और मेरे लिए ये कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट या नेताओं की बातें नहीं है, ये एक भौतिक सच्चाई है जिसे इस स्टील के डिब्बे ने मुमकिन बनाया है। हर चीज जो हमारे हाथ में आती है उसके पीछे एक लंबी यात्रा है। इस किताब ने वाकई उस यात्रा के प्रति एक नई समझ दी है। वो लॉजिस्टिक चेतना वाली बात मुझे बहुत सही लगी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।